नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वय दिनकर पाटुकर। एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रही है प्राध्यापक डॉक्टर सुचिता ठाकरे मैम। नमस्कार मैडम जी।
जी नमस्कार।
साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जी देशमुख। नमस्कार सर जी।
नमस्कार नमस्कार।
जैसा कि ज्ञात हो कि पिछले 4 सप्ताह से छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर कार्यक्रम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरि जी देशमुख एवं तहसील संस्थान के सचिव टीकेश गुवे जी के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है और आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़ी हुई है प्राध्यापक डॉक्टर सुचिता ठाकरे जी।
नमस्कार।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विगत कई वर्षों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से समाज में कार्यरत हो, तो इस संबंध में सर्वप्रथम तो मैं आपको छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी की ओर से PhD की उपाधि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अंधविश्वास निर्मूलन समिति से कितने वर्षों से जुड़ी हो और कौन से पद पर आप कार्यरत हो।
नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी जानती हूँ कि 1982 में प्राध्यापक श्याम मानव जी ने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की स्थापना की थी और उसके तहत उन्होंने पूरे देश भर अंधश्रद्धा उन्मूलन का काम शुरू किया था। तभी मैं 1992 से 1992 से इस समिति से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब कॉलेज में थी, यानी जब मैं 12वीं में थी, तभी से मैंने सर को देखा, सर के भाषण सुने और सर के प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए जगह जगह पर। तब वो कॉलेज में जाते थे या कहीं पे भी गांव में जाते थे और जाहिर व्याख्यान के रूप में वो अपने विचार रखते थे, तो मैंने भी उनके विचार सुने और मैं प्रेरित हो गई। और फिर तभी से मैंने, जब मैंने जस्ट पास आउट किया था 12वीं, तभी से मैं इस समिति से जुड़ी हूँ। फिर हम लोगों ने भी वही काम शुरू किया, स्कूलों में जाना, कॉलेजेस में जाना और वहाँ के बच्चों को ये सारी वैज्ञानिक बातें बताना और सभी घटनाओं के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण होते हैं उसके बारे में उनको बता के हमने ये काम शुरू किया। तब पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी समिति से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब वैसे हमें पता चला कि नहीं, ये काम तो बहुत गहरा है और हमें समाज के रूट में जाके ये करना है, जड़ों में जाके हमें ये करना है। और तभी से मैंने ये काम मैंने शुरू किया और मुझे लगा कि खास तौर पर बच्चे और महिलाओं में अंधविश्वास उन्मूलन का काम करना जरूरी है और तभी से मैंने महिलाओं में विशेषता यह काम करना शुरू किया।
ताई, भारत में ऐसी बहुत सी प्रथाएं प्रचलित थी, क्या अंधविश्वास की जड़ें इनसे जुड़ी हुई ऐसा आपको लगता है?
जी हाँ सर, जैसे यह तो वाकई चिंता की बात है कि समाज में अंधविश्वास की जड़ें आज भी बेहद मजबूत है और स्त्री पुरुष तुलना में अगर हम देखते हैं तो स्त्री अधिक अंधविश्वास से पाई जाती है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो निश्चित ही यही सब प्रथाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतवर्ष में वैदिक काल में महिलाओं का स्थान पहले तो सभी क्षेत्रों में बराबरी का था। मैं वैदिक काल की बात कर रही हूँ, तब महिलाओं का स्थान सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबरी का था। महिलाएं शिक्षा भी लेती थी, हमें पता है कि गार्गी, मैत्रेयी, लोकमुद्रा, घोषा, पाला जैसे स्त्रियों के असामान्य बुद्धिमत्ता के बारे में हमने सुना भी है। लेकिन मध्ययुगीन काल शुरू हो गया और तभी से पुरोहित शाही पैर जमाने लगी और जिसके तहत महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया गया और उसे पूजा पाठ और अलग अलग प्रथाओं में जकड़ कर रखा। भारत के कुछ हिस्सों में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक या डायन प्रथा, पर्दा प्रथा, राजस्थान के राजपूतों में जोहर प्रथा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ये सारी जो प्रथाएं हैं उन्हीं में आज की अंधविश्वास की जड़े जुड़ी हुई है या है, मौजूद है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आज भी ऐसी परंपरा और आस्था के नाम पर ये सारा महिलाओं का शोषण शुरू है, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इसकी जड़े जो है वो ये सारी परंपराएं है।
ताई, आमतौर पर देखा जाता है कि अंधविश्वास की शिकार ताई महिला ज्यादा होती है, ऐसा क्यों?
हाँ, क्योंकि देखिए अभी अभी तक जो मैंने जिन जिन प्रथाओं के मैंने नाम लिए, वो इन सारी प्रथाओं में हमें महिलाओं का शोषण दिखाई देता है हर जगह, चाहे वो देवदासी प्रथा हो या कोई गायन प्रथा हो या कोई अन्य प्रथा लेंगे तो इसमें ज्यादातर महिलाओं का शोषण दिखाई देता है। और इसके कुछ कारण भी है, जैसे कि महिलाएं बहुत साल सालों से हम कहेंगे या तो फिर युगों से शिक्षा से वंचित है, और शिक्षा ना होने के कारण वो उसे पता नहीं चलता कि वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं कौन से घटनाओं के पीछे, और दूसरा कि उसका समाज में और घर में एक सम्मानजनक स्थान ना होना, इसकी वजह से भी वो मानसिक तनाव से गुजरती है। इसका पर्यवसन भी कोई बुआ बाबा की चरण में जाने में होता है। और आज तक जितने भी बाबा हम लोगों ने एक्सपोज किए हैं उसमें अधिकांश बाबाओं के आस पास महिलाएं ज्यादा दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है, और ये लोग इन देवस्त्रियों का उत्पीड़न या शोषण करते पाए गए हैं। दूसरा यह कि उसकी बहुत साल से शिक्षा से वंचित होना, मैंने अभी भी बताया कि कहते हैं कि ज्ञान की रोशनी से अंधविश्वास के ज्ञान की रोशनी अंधविश्वास के अंधकार को मिटाती है, लेकिन यहाँ तो शिक्षा के द्वार ही इसके लिए बहुत समय तक बंद थे। और आज भी कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्री अधिक अशिक्षित है। इसके साथ साथ स्त्रियों के साथ दुर्गम व्यवहार, यह भी एक कारण है कि क्यों स्त्री ज्यादा अंधविश्वासी पाई जाती है। उसे कभी अपने बराबरी का ही ना समझना या उसे कोई निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा ना समझना, पूजा पाठ या धार्मिक अनुसंधान से बांधे रखना, पारिवारिक संस्कार इससे जो होते हैं बचपन से, जैसे कि तू लड़की है यह मत कर वह मत कर, विधवा है तो सामाजिक समारंभ में मत जा, इस तरह के जो संस्कार है ये भी अपने विचारों में पिछड़ापन लाते हैं। और विश्व में स्त्रियों की संख्या तकरीबन आधी है, और अगर इतना बड़ा समाज का हिस्सा अगर तुलना में जिससे हिस्से से पिछड़ा रहा तो यह बात समाज की उन्नति में बाधा ही साबित होगी, और इसके कारण स्त्रियों में अंधविश्वास ज्यादा होता है।
देवदासी और डायन प्रथा क्या थी, क्या आज भी यह प्रथा हमारे देश में मौजूद है?
जी हाँ, देवदासी और डायन प्रथा आज भी मौजूद है हमारे इसमें। जैसे कि देवदासी प्रथा का अगर हम देखेंगे तो ये जो देवदासी प्रथा है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन राज्यों में दिखाई देती है, ज्यादा प्रचलित है। और आधुनिक समाज में आस्था के नाम पर और परंपरा के नाम पर बालिका एवं महिलाओं का शोषण करती है, सब प्रथाएं अपने समाज का घिनौना सच बयां करती है। जैसे देवदासी प्रथा भले ही कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा है इससे, लेकिन फिर भी आज भी दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में इसका चलन जारी है, जिसके तहत बालिकाओं का विवाह भगवान के साथ किया जाता है, जहाँ उसका पंडितों द्वारा और अन्य लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न होता है। आज इन देवदासियों की स्थिति वेश्याओं से भी बदतर है। महिलाओं का आज तक अधिक जो उत्पीड़न हुआ है वह इस प्रथाओं के कारण हुआ है। डायन प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो डायन प्रथा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती है और आज भी मौजूद है। इसके तहत गांव की कोई भी कमजोर स्त्री को डायन घोषित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि डायन करार दी गई इस स्त्री में ऐसी शक्ति होती है जो जादुई ताकतों से शिशुओं को मार सकती है, हरे भरे पेड़ सुखा सकती है या किसी जीव को क्षण में गायब भी कर सकती है, और ऐसे संशय स्त्री को ग्रामीण लोग डायन घोषित कर देते हैं और उसकी फिर अलग अलग तरीके से उसे प्रताड़ित किए जाती है, जैसे उसकी पीट पीट कर हत्या कर देना, या उसे नंगा करके घुमाना पूरे गांव भर, ऐसी प्रथा आज भी है सर। और इसके प्रमाण भी हमें दिखाई देते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज चैनल्स में हमें सुनाई देता है कि ऐसी प्रथा है। और इसके कारण आज तक झारखंड में 552 इतनी हत्याएं हुई है और बिहार में भी ऐसी हत्याएं होती रहती है आमतौर पर। इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए लेकिन ये कानून ये अधिनियम समाज स्वीकार नहीं करता और इसके कारण यह प्रथा अभी भी चलती है।
ताई हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, समाज को अंधा श्रद्धा मुक्त करने के लिए हमें विशेष तौर पर क्या क्या करना चाहिए ताकि समाज से अंधश्रद्धा जड़ से समाप्त हो पाए?
हाँ, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि पहले तो मानसिक तौर से महिलाओं को या पूरे समाज को ही हमें साक्षर बनाना होगा, साक्षर साक्षर और सक्षम मैं कहूंगी बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि भूत किसे लगता है तो स्त्रियों को लगता है ज्यादातर, देवी देवताओं का शरीर में प्रवेशना ये भी बातें जैसे स्त्रियों के साथ ज्यादातर होती है, या तो फिर स्त्रियों को वहाँ पे लेके जाया जाता है उनकी समस्याएं दूर करने के लिए। और बाकी भी बानामती हो या नरबलि की प्रथाएं हो, इनमें भी हमें ज्यादा स्त्रियों का योगदान, यानी ज्यादा स्त्री उसे पीड़ित है ऐसा दिखाई देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें इन महिलाओं को इस दलदल से बाहर निकालना चाहिए। हाँ, कानून है, कानून बनाए भी गए हैं, अभी अभी महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कायदा बनाया गया है, लेकिन इसे क्रियान्वित कैसे किया जाता है? क्या इन राज्यों में ये सारे कानून अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या राज्य उन्हें उनके लिए कुछ उदासीनता दिखा रहे हैं? इससे भी ये डिपेंड करता है। फिर अंधविश्वास देश के विकास और प्रगति के लिए बड़ी बाधा है, ये हमें पता है। तो हमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, वही हमारा शिक्षित समाज तो उनका मंत्र तंत्र और बुद्ध भानामती आदि विश्वास के साथ जुड़ा है। तो हमारे देश में अंधविश्वास की मौजूदगी होना यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गैर मौजूदगी को दर्शाता है। इसीलिए हमने स्कूलों में कॉलेजेस में जाके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच को दृढ़ करना होगा, बच्चों को उस दिशा में सोचना सिखाना होगा और महिलाओं की विचारधारा में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। यह काम हमें समिति से जुड़कर या समिति से ना जुड़कर भी हम कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को अपने टीचर स्टाफ को ये सारी बातें बता सकती हूँ या उनको अंधश्रद्धा मुक्त कर सकती हूँ। अगर मैं अभी देखिए ना अभी मैंने डॉक्टरेट की है तो मैंने अपने काम को इस क्षेत्र से जोड़ लिया, हम ये कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी हो तो गृहिणी भी ये काम कर सकती है, बिल्कुल। हम अलग समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम ये सोच उनमें ये सकारात्मक बदलाव उनमें ला सकते हैं, महिलाओं की विचारधारा बदल सकते हैं।
ताई, जैसा कि अभी आपने पीएचडी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, तो आपने पीएचडी के लिए कौन सा विषय चुना और किस तरह से इसकी तैयारी आपने की?
मेरा जो सब्जेक्ट था वो था कि द प्रेजेंस स्टेटस ऑफ ट्राइबल आश्रम स्कूल, और इसके लिए मैंने चार ट्राइबल प्रोजेक्ट चुने थे, जैसे अमरावती, सीकर, यवतमाल, मेघघाट, ये प्रोजेक्ट थे। और वहाँ पे मैंने आपने कहा कि मेरे मैंने कार्य को कैसे इससे जोड़ लिया है, तो वहाँ मैंने देखा कि मेरा ये सर्वेक्षण करते समय मेरे समझ में आया कि अभी आदिवासी जो समाज है वो तो विकास से काफी दूर रहा है आज तक, तो उनमें तो ये अंधविश्वास की जड़ें ज्यादा मजबूत है ऐसा मैंने देखा। और उनकी जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन है जो स्कूलों में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब इनके ये बच्चे हैं इनसे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिनके विचारधारा पहले से ही मजबूत हो चुकी है वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो तो उनको तो अब नहीं बदल सकते। और भाषा ये भी एक समस्या है, आदिवासी लोगों की भाषा हम नहीं जानते, तो वो अभी जो बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं वो हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने उन पे फोकस करना चाहिए। और आदिवासियों में तो इससे भी बहुत बुरी हालत है सर, अंधविश्वास के क्षेत्र में उनमें नरबलि की प्रथा है, उनमें जादू टोनका, या वो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो दवा का हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती, कोई दवा नहीं लेना चाहती, बच्चे अगर बीमार है तो वो घूमता के पास लेके जाते हैं या मानसिक के पास लेके जाते हैं, दवा वाला के पास लेके जाते हैं। हमारे समाज में तो है ही है, लेकिन वो समाज में और ज्यादा है, तो इससे बहुत बच्चे बच्चों की बलि दी जाती है इस अंधविश्वास के कारण। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा, टीवी पे सुना होगा कि मेलघाट में 2 साल के बच्चे को पेट पे इससे चटकी दी गया और डाला गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैंने जब भी सर्वेक्षण किया मेरे सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ वहाँ मैंने स्कूलों में ये चमत्कार यानी वैज्ञानिक जो प्रयोग है वो वहाँ पे मैंने किए, उनको बताया कि हर घटना के पीछे कुछ विज्ञान रहता है, वो आप जानने की कोशिश करो, वो देखो ये सारे केमिकल रिएक्शंस रहते हैं तो उसके कारण ये सारी घटनाएं होती है। कुछ भी कोई भी चीज अपने आप नहीं करती या कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, तो ये सब मैंने करने का प्रयास किया। और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं आदिवासी स्त्रियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर मैं फोकस करूँ और उनमें जाके अंधविश्वास उनमें बन का काम करूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सही आपका, आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर अपनी महत्वपूर्ण बातें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना समय दिया। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरीश जी देशमुख। सर जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार।
जैसा कि अभी छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर ताई ने बहुत अच्छी बातें अपने साथ साझा की है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आदिवासी ईश्वर से अधिक प्रकृति प्रेमी है फिर भी उनमें अंधश्रद्धा क्यों होती है, और इसके पीछे आदिवासी समाज में काम करते समय क्या हमें भाषा की समस्या आती है, और आती है तो हमें इसे किस तरह दूर करनी चाहिए।
हेलो नमस्कार जी, डॉक्टर सुचिता जी ठाकरे जिन्हें बीजेपी विश्वविद्यालय राजस्थान से शिक्षा शास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी उपाधि प्राप्त की है। उनका विषय था आदिवासी बच्चे के उत्थान हेतु आवश्यक कदम था। उन्होंने इस हेतु आदिवासी स्कूल में अमरावती जिले के मेलघाट के आश्रम स्कूलों का अभ्यास कर बच्चों के शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों को उजागर किया है, तथा आदिवासी कस्बे में व्याप्त अंधश्रद्धाओं का अभ्यास कर उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन विषय से संबोधन भी किया है। 200 आश्रम स्कूलों में उन्होंने भेंट दी है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि महिलाएं अंधश्रद्धा की वाहक होती है, लेकिन सुचिता जी ने सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्य में हाथ बटा सकती है, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ा सकती है। दूसरों का अनुकरण करने की बजाय स्वयं कर्म को महत्व दीजिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। देखिए जैसे आदिवासी क्षेत्र में काम करते वक्त जो समस्याएं आती है उसमें मांत्रिक तांत्रिक इनको जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हमको समझना पड़ता है, बड़गा भूमका, और आदिवासी जैसी क्षेत्र में काम करते हुए अंधश्रद्धा की जो समस्याएं होती है वो तो उनकी भाषा में सरल भाषा में समझने की कोशिश की जाती है। महिलाओं के कार्य को की आवश्यकता अंधश्रद्धा निर्मूलन की आवश्यकता क्या है, और ये इन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। जो कुप्रथाए हैं जैसे उनका भी विश्लेषण उन्होंने किया है। अंधश्रद्धा के प्रथाएं जुड़ने के कारण ये जो कुप्रथाएं जुड़ने का है वो अंधश्रद्धा के शिकार होते हैं, उनका शोषण होता है, ये भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और डायन टोटका करने वाली महिला जैसी ये करार दिया जाता है कि जिसका अस्तित्व दुनिया में नहीं है फिर भी कोई डायन करके किसी को करार कर देना, टोटका किया करके करार देना, उसको बहिष्कृत करना, उसे बात नहीं करना, और एक अंधविश्वास के चलते उनको प्रताड़ना करना। वैसे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है, और अभी तो किसी को टोटका कहने डायन कहना या टोटका करने वाले कहना ये दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए 6 माह की सजा और 7 साल का 6 माह से 7 साल तक सजा है और 5,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना है। ये महाराष्ट्र में कानून है, लेकिन अन्य प्रांतों में कुछ कानून बनने के हैं, ये कानून बनने की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र में काम करते वक्त उनकी भावनाओं को जन भावनाओं को देखते हुए काम करना पड़ता है। जैसे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति किसी ईश्वर और धर्म के खिलाफ में नहीं है, एक ईश्वर और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है, युद्धभंग होता है, उसके खिलाफ में हम काम करता है। जैसा कि ये बताएं कि किसी छोटे बच्चे को 2 माह के 3 माह के बच्चे को धक्का दिया जाता है, उसको दम्मा देना कहते हैं और उसको पेट को पूरा जलाया जाता है। अभी एक बच्चा उसमें मृत्यु हो गई, कई बच्चों की मृत्यु हुई। इस तरह से अंधश्रद्धा दूर करने के लिए जन प्रबोधन की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अंधश्रद्धा के कारणों को उजागर करते हुए कि साक्षर बनाना चाहिए, वैज्ञानिक सोच का प्रसार प्रचार करना चाहिए, प्रबोधन करना चाहिए, चमत्कार प्रदर्शन के साथ उनके कारणों को उजागर करना चाहिए, समाज को अंधश्रद्धा मुक्त करने के उपाय ये बार बार करना पड़ेगा, तभी ये सब समाज में से मुक्त होगा, अंधश्रद्धा मुक्त होगी। सुचिता जी ठाकरे ने मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के सभी हमारे श्रोता है, उनको इस महत्वपूर्ण महिलाओं के अंधश्रद्धा निर्मूलन के संबंध में जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें जो डॉक्टरेट मिले हैं उनका मैं मोबाइल वाणी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और दिनकर जी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक अच्छा अवसर दिया और हमारे कार्यकर्ता जो वर्धा जिले की संगठिका है डॉक्टर सुचिता जी ठाकरे, उनको मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप अतिथियों का जिन्होंने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच से एक अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर अपने महत्वपूर्ण जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद,
थैंक यू।